ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के खिलाफ देश द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बाद ये पहली ऐसी बैठक होगी। भारत ने आतंकवाद से युद्ध में ब्रिटेन सरकार के सहयोग और समर्थन की सराहना की है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय में स्थायी अवर सचिव ओलिवर रॉबिन्स के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। आतंकवाद के खिलाफ विश्वभर में भारत के सिद्धांत और कड़े रुख का संदेश देकर 7 बहुदलीय प्रतिनिधिमंडलों में से 3 कल स्वदेश लौट आए। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडलों ने विदेशी नेताओं, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रभावशाली नीति विचारकों के सदस्यों, मीडिया और प्रवासी भारतीयों से वार्ता की। जनता दल यूनाइटेड के सांसद संजय झा ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने का संदेश ये था कि पूरा देश आतंकवाद के मुद्दे पर एकजुट हो।
ऑल पार्टी डेलीगेशन जाने से सरकार जो भेजी उसका एक बड़ा मैसेज समझे गए लोगों को ये जरूर आश्चर्य लगा कि पूरा देश इस इशू पर एक साथ है टेररिज्म के खिलाफ और सारे पार्टी के लोग एक वॉइस में बात कर रहे हैं।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद की है लेकिन पाकिस्तान के हरकतें दुखदाई हैं।
When this attack happened, data clearly showed and the evidence showed that this attack was not from very far but just our immediate neighbor, which was very unfortunate and painful for us. And then under the leadership of our Prime Minister, we had Operation Sindoor. And as a part of the operation, this is an activity which Prime Minister wanted all of us to do, is we have come here not as just members of parliament or ideologies. We have come as Indians here to tell the world what is really happened.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 पर मोहर लगा दी है और ये पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो गया है। विधि और न्याय मंत्रालय ने कल इस अधिनियम को अधिसूचित किया और अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोजी और पुर्गी को इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी राजकीय उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजभाषा के रूप में मान्यता दी है। इस अधिनियम के लागू होने से पहले अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल सरकारी कामकाज के लिए किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ली जे म्यांग को कोरिया गणराज्य के राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भारत आरओ के विशेष रणनीतिक साझेदारी को और विस्तारित करने तथा मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा प्रकट की। सत्तारूढ़ रूढ़ीवादी पीपल्स पावर पार्टी के किम मुनसू ने हार स्वीकार कर ली है और ली जे म्यांग को जीत की बधाई दी है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक आज शुरू हुई। इसमें रेपो दर में कटौती पर फैसला लिया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में समिति के फैसले की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी आज बढ़त के साथ खुले। अब से कुछ देर पहले बम्बई स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 156 अंक की बढ़त के साथ 80,893 पर था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 60 अंक ऊपर चढ़कर 24,603 पर कारोबार कर रहा था। सिक्किम में प्रतिकूल मौसम के कारण बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों लासेन और सातेन में राहत और बचाव कार्य में देरी हो रही है। मंगन के जिला कलेक्टर अनंत जैन ने कहा कि लासेन में अब भी लगभग 130 पर्यटक फंसे हैं। मौसम विभाग ने आज मूसलाधार बारिश के मद्देनजर असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल क्रिकेट का खिताब जीत लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कल रात रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता। कप्तान रजत पाटीदार ने विराट कोहली और टीम के प्रशंसकों को जीत के लिए धन्यवाद दिया।
As I said, I think he deserves more than anyone else, Virat Kohli and all the fans. And I just want to say one line for the fans, E Sala Cup Nandu.
विराट कोहली ने कहा कि इस जीत के लिए हमने बहुत मेहनत की है। फुटबॉल में फीफा के अंतर्राष्ट्रीय दोस्ताना मुकाबले में आज भारत का सामना थाईलैंड से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।